फ्रेंड्स, GSTR 1 से संबंधित इस समय सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। GSTR 1 जब फाइल करने जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से GSTR 1 फाइल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे रिटर्न्स जो GSTR 1 फाइल हो रहे हैं उसमें एरर शो कर रहा है, एरर आ रही है। और इसके अलावा हम बात करेंगे ड्यू डेट एक्सटेंशन की, कि क्या इसकी GSTR 1 की ड्यू डेट जो है अब वो क्या है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे GSTR 1 में जो सबसे नया एक पेचीदा समय आया है, 6% GST रेट का कालम नहीं है, इसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो GSTR 1 आज की डेट में फाइल किए जा रहे हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और अगर हम इस पर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि GSTF पोर्टल जो है वो आजकल जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण ये है कि हमारे पास आज की डेट में जब रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो 6% GST का कालम होना चाहिए, हमें 6% GST के कालम में अपना टैक्स भरना है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इसका कालम नहीं आ रहा है। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इसके लिए हमें करना क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, जिन लोगों ने पूछा भी है कि उन लोगों ने किया क्या है, 1% और 5%, 1% के कालम में अमाउंट भर दी है और 5% के कालम में अमाउंट भर दी है, और इसको कर दिया 5 और 1, 6%। इस तरह से किया हुआ है। कुछ लोगों ने क्या किया है कि 5% वाले कालम में ही 6% का अमाउंट फिल कर दिया है। देखिए, हमें करना क्या है और एडवाइजरी क्या जारी हुई है और हम कर क्या रहे हैं, ये सब समस्या इसलिए प्रकट हो रही है कि GST पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, और वो जो भी एडवाइजरी जारी करता है इतनी देर से जारी करता है कि तब तक हम बहुत सारी गलतियाँ कर चुके होते हैं। जैसा कि आपने GSTR 4 में भी देखा था कि इस तरह की बहुत सारी गलतियां आपके द्वारा हो गई हैं जिनका निदान अभी तक नहीं हो पाया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि GST पोर्टल पर आकर के हमें करना क्या है। देखिए, करना ये है कि चाहे B2B हो और चाहे B2C हो, अभी हम B2B की बात करते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। यहाँ पर आकर के देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कालम रेट के कालम दिए हुए हैं, रेट परसेंटेज के, कि हमें कहाँ पर फिल करना है। कुछ लोगों ने गलती अभी तक क्या की, 1% में फिल कर दिया है और यहाँ पर आकर के 5% में फिल कर दिया है और इस तरह से उसको 6% बनाया है। लेकिन जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें ये बताया गया है कि आपको ये जो 5% का कालम है इसी में आपको अपना अमाउंट भरना है। देखिए, ये किन के लिए है, खास तौर से ये प्रॉब्लम तब आई जब ईंट भट्ठा वालों को कंपोजिशन स्कीम से हटा करके उनको लेकर के आया गया रेगुलर स्कीम में। किसमें लेकर के आए हैं, रेगुलर स्कीम में। जब उनको हम रेगुलर स्कीम में लेकर के आए हैं तो उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ गई 6%, और यहाँ पर कालम है नहीं, यहाँ पर कालम केवल 5% का है। तो उन्हीं लोगों को ये ध्यान देना है कि जो अपनी लायबिलिटी है, यानी जिस अमाउंट पर हमें टैक्स पे करना हो यहाँ पर भरना है। मान लीजिए हमारी सेल आ रही है 1,000 रुपये, तो हमें यहाँ पर 1,000 रुपये फिल करना है, और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इसने कंप्यूट कर लिया 50 रुपीज़, ठीक है। तो इसको हमें 50 रुपीज़ की जगह क्या कर लेना है, ठीक है ना, अगर IGST है तो हमें कर कितना लेना है, 60 रुपीज़, और यहाँ पर जब हम 60 रुपीज़ करेंगे तो ये 60 एक्सेप्ट भी कर ले रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारा अमाउंट है 1,000 रुपये, ऑटोमेटिक जो कंप्यूट हो रहा है वो 50 रुपीज़, लेकिन हमको इसको एडिट करके कर लेना है 60 रुपीज़। तो ये अगर हमें IGST है तो इस तरह से करना है, और अगर हमारा IGST नहीं है, सेम स्टेट का है, तो यहाँ पर हमें 30 रुपीज़ और यहाँ पर 30 रुपीज़ एडिट करके ठीक कर लेना है। हमें इस अमाउंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, और ना ही हमें ये करना है कि ये 5% में दिखाएं और वही अमाउंट 1% में दिखा करके यहाँ पर लायबिलिटी को कंप्यूट करें। जिन लोगों ने कर लिया है वो आगे इसको एडिट कर लें और एडिट करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, उस एडवाइजरी में हमें यही बताया गया है कि हमें 5% की जो टैक्स लाइबिलिटी है वहाँ पर हमें अमाउंट जो हमारे सेल अमाउंट है, जो टर्नओवर है, वही फिल करना है। केवल हमें एडिट करना है तो इस अमाउंट को एडिट करना है और उस अमाउंट को एडिट करने के बाद हमको उसको ठीक कर लेना है। तो मेरा ख्याल है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। यहाँ पर जो आपका अमाउंट 5% और 6% का है तो 5% वाले कालम में जाएंगे और वहाँ पर जो हमारा अमाउंट है उसको एज इट इज़ रखेंगे। यानी अगर हमारा सेल अमाउंट है 1000 रुपीज़ तो यही रहेगा। ऑटो कंप्यूट होगा 50 रुपीज़। इसको हमें एडिट करना है। किसको एडिट करना है? इस 50 रुपीज़ को एडिट करना है और यहाँ पर इसको एडिट करके यहाँ पर कर देना है 60 रुपीज़। अगर हमारा CGST और SGST है तो हमें 30 और प्लस 30 कर देना है। इस अमाउंट को हमें कहीं भी चेंज नहीं करना है। जो हमारा सेल अमाउंट है वो एज इट इज रहेगा। अब बात आती है जिनका एरर शो हो रहा है या पोर्टल बहुत स्लो हो रहा है जिसकी वजह से वो GSTR 1 फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि GSTR 1 फाइल नहीं हो पा रहा है या उसमें दिक्कत आ रही है तो आपको अभी कोई भी पोर्टल लेट फीस उसमें नहीं लगा रहा है। हालांकि आपको मालूम है कि GSTR 1 में भी लेट फीस लगनी तय है, लेकिन अभी भी पोर्टल उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा है। इसलिए अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पोर्टल कैलकुलेट जरूर नहीं कर रहा है, लेकिन वो कभी भी हमसे वो लेट फीस मांग सकता है। तो इसलिए ड्यू डेट का एक्सटेंशन होना अनिवार्य है, क्योंकि ये गलती किसकी है? ये गलती है पोर्टल की, ये SAC की गलती नहीं है, ये पोर्टल की गलती है। और पोर्टल भी हमें बता कब रहा है? 10 तारीख को। ठीक है, कब बता रहा है? डेट 10 तारीख को, यानी 10 मई को हमें बता रहा है। और लास्ट डेट कब है? 11 मई। 10 मई को भी हमें ये आफ्टरनून बता रहे हैं और 11 मई लास्ट डेट है, तो आदमी इसको कैसे कंप्यूट करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने कंप्यूट अपने हिसाब से कर लिया है उनका पोर्टल क्या इलाज करेगा? तो ये सारी की सारी गलतियाँ पोर्टल की हैं। उसे चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको समय से बताए, जिससे कि लोग गलती ना करें। क्योंकि जो लोग अभी भी नहीं फाइल कर पा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ठीक है, पोर्टल अभी लेट फीस नहीं कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन जो सामने वाला है, जो हमारा सब परचेजर है, उसको जिसको हम गुड सप्लाई कर रहे हैं, उसको ITC कैसे मिलेगी अगर हम अपना रिटर्न टाइम से फाइल नहीं कर पा रहे हैं? तो इन समस्याओं को देखते हुए अभी जो मेरा अपना विचार है, जो मेरी अपनी सलाह है, वो ये है कि जो एडवाइजरी कह रही है कि पोर्टल पे आप 50 रुपीज़ को एडिट करके 60 रुपीज़ कर लीजिए, तो वही करें। अपना कोई भी दिमाग उसमें न लगाएं, क्योंकि GSTR 4 में हम इस तरह की समस्या का सामना कर चुके हैं और हमसे दोबारा टैक्स मांगा जा रहा है, उसका भी अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। Thank you.